नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। मुख्य समाचार। नई दिल्ली ने H-1B वीजा प्रतिबंधों पर वाशिंगटन के समक्ष चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यवधान से व्यक्तियों और उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की है और कहा है कि गंभीर चिंता का विषय है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को IMDB भ्रष्टाचार मामले में 15 साल की जेल और भारी जुर्माना की सजा सुनाई गई है। सीरिया में होम्स के वादी अल धाग इलाके में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 8 लोग मारे गए। समाचार विस्तार से। भारत ने अमेरिका के साथ H-1B वीजा प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार को ऐसे भारतीय नागरिकों से कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने नई दिल्ली और वाशिंगटन में अमरीकी अधिकारियों से इस बारे में बात की है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। प्रवक्ता ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर ज्यादती पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश में आगामी चुनाव पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और सहभागी चुनावों का समर्थन करता है। भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। कनाडा में भारतीय छात्र की मौत पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी उसके परिवार के संपर्क में हैं।
भारतीय छात्र का कनाडा में शूटिंग के दौरान हत्या हुई है। उनके परिवार बहुत दुखद है और हम अपनी शोक व्यक्त करते हैं। हमारी जो कौंसलावास है वहाँ उनके परिवार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं इस मसले पे, ताकि क्या छानबीन होना चाहिए उस बात को और आगे ले जाया जा सके। जो भी मदद हो सकता है वो हम कर रहे हैं।
कोलकाता में आज हिंदू संहिति के सदस्यों ने बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के विरोध में सियालदह से बेग बागान तक रैली निकाली। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन की खबरें आई हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के मेदिनीपुर शहर में बजरंग दल और अन्य सनातनी संगठनों के सदस्यों ने एक विरोध रैली में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने आज मालदा जिले के बामनगोला ब्लॉक में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। पाकुहाट इलाके में भी एक विरोध रैली का आयोजन किया गया और मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया गया। बांग्लादेश में आगामी 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से पहले जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच संभावित सीट बंटवारे पर चर्चा से एनसीपी के भीतर बढ़ते मतभेद सामने आए हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्टि की कि जमात के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा जारी है और पार्टी शुरुआत में कम से कम 50 निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के समायोजन की मांग कर रही है। हालांकि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और अगले कुछ दिनों में अंतिम निर्णय आने की संभावना है। इस बातचीत से एनसीपी में असंतोष पैदा हो गया है। एक गुट जमात के साथ गठबंधन का समर्थन कर रहा है और दूसरा इसका कड़ा विरोध कर रहा है। एनसीपी के संयुक्त सदस्य सचिव और जमात के साथ पार्टी के संबंधों के बड़े आलोचक मीर अरशदुल हक ने मतभेद का हवाला देते हुए कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जेल में बंद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को भ्रष्टाचार के मामले में कुआलालंपुर उच्च न्यायालय ने 15 साल की सजा दी है और 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का भारी जुर्माना लगाया है। नजीब को अरबों डॉलर के मलेशिया डेवलपमेंट बरहात घोटाले में सत्ता के दुरुपयोग और धन शोधन के आरोप में दोषी ठहराया गया है। उच्च न्यायालय ने 72 वर्षीय नजीब को सत्ता के दुरुपयोग के 4 मामलों और घोटाले से उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में 7,000 लाख डॉलर से अधिक के धन शोधन के 21 आरोपों में दोषी पाया गया। उधर पूर्व प्रधानमंत्री नजीब ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और कहा कि धनराशि सऊदी अरब से राजनीतिक दान थी। वे अगस्त 2022 से जेल में हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsAlert हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि थाईलैंड के F-16 लड़ाकू विमान ने बंते मीची प्रांत के सीमावर्ती गांव में 40 बम गिराए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमले से चोकचे गांव में घरों और सार्वजनिक इमारतों को क्षति हुई है।
थाई सेना ने बंते मीचे प्रांत की पोईपेट नगर पालिका में नागरिक आवासीय क्षेत्र पर भी तोप से गोले दागे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हिंसा को देखते हुए शांति समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन का आग्रह किया था। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बताया कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानित से टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान विदेश मंत्री रूबियो ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होने वाली चर्चाओं में अमेरिका के सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। औपनिवेशिक काल से जारी क्षेत्रीय विवादों के बीच थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर हाल में हुई झड़पें सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य टकराव के बाद मई के अंत में फिर से भड़क उठी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर।
सीरिया में होम्स के वादी अल-धाब क्षेत्र में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 8 लोग मारे गए हैं और 18 घायल हो गए। सरकारी समाचार एजेंसी सना के अनुसार आपातकालीन दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि विस्फोट मस्जिद के अंदर लगाए गए विस्फोटक उपकरणों के कारण हुआ। बलूच छात्र संगठन BSO आजाद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का बलूच महिलाओं को जबरन गायब करना बलूच नरसंहार का सबसे भयावह रूप है। एक बयान में संगठन के प्रवक्ता ने दावा किया कि बलूच महिलाओं को जबरन गायब किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आतंकरोधी अभियानों के अंतर्गत पाकिस्तानी सैन्य संस्थानों द्वारा नागरिक क्षेत्रों में ड्रोन से हमला किया जाता है। ये कथित कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और वैश्विक मानवाधिकार निकायों पर इन अत्याचारों पर चुप रहने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वह फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस सप्ताह के अंत में मुलाकात करेंगे। श्री ज़ेलेंस्की ने आज कीव में मीडिया से बातचीत में कहा कि दोनों नेता रविवार को वार्ता के दौरान यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे। ये बैठक करीब 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे कूटनीतिक प्रयास के बीच हो रही है। जापान में टोक्यो के मिशिमा में आज चाकू से हमले की घटना में 14 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक रबर फैक्ट्री में लोगों पर हमला किया। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध को घटनास्थल पर ही हिरासत में लिया गया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने आयुध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए कारखानों का अनावरण किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए इनका उत्पादन बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिरुवनंतपुरम में तीसरे महिला T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। भारत ने 113 रन का लक्ष्य 14वें ओवर में हासिल कर लिया। श्रीफारी वर्मा ने सर्वाधिक 79 रन की पारी खेली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में H-1B वीजा प्रतिबंधों पर वाशिंगटन के समक्ष चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यवधान से व्यक्तियों और उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की है, कहा है कि यह गंभीर चिंता का विषय है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को भ्रष्टाचार मामले में 15 साल की जेल और भारी जुर्माना की सजा सुनाई गई है। और सीरिया में होम्स के वादी अल-धाब इलाके में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में विस्फोट में 8 लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये समाप्त हुआ। नमस्कार।